अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969। शरीर छोटा परंतु हाथ और साथ नहीं। दूसरा पॉइंट है, बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे, तो अभी वह समय है। पहले तो वह अपने को निरहंकारी नम्रचीत कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सम्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? बाबा कहते हैं, अपने को चेक करो। इतने वर्षों से बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, इतने सारे ज्ञान रत्नों से आप सभी का श्रृंगार किया है, तो कितने रत्न आपने पहने हैं और कितने फेंक दिए, चेक करो। इतने वर्षों में, इतने महीनों में, इतने दिनों में कितने श्रृंगार को आपने धारण किया है, अपने को चेक करो। अगर श्रृंगार धारण नहीं किया तो क्या कहेंगे कि रत्नों को फेंक दिया? दिए थे पहनने के लिए, श्रृंगार करने के लिए। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने सारा श्रृंगार किया है। उनकी दृष्टि से, वाणी से, कर्मों से पता पड़ता है कैसे हैं। वह बच्चे अंदर बाहर एक होंगे, अंदर एक बाहर एक ऐसे नहीं। जो बाहर दिखते हैं वही अंदर से हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं। बाहर दिखाने का रूप अलग होता है और अंदर का रूप अलग होता है। जब स्टेज पर होते हैं तो अलग होते हैं और स्टेज से नीचे उतरते हैं तो अलग होते हैं। व्यवहार से पता चलता है। जो संत होते हैं वो कहाँ भी बैठे, झोपड़ी में बैठे या महल में सोए, व्यवहार एक ही होगा। जमीन पर चले या आसमान में उड़े, व्यवहार एक ही होगा। ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग हैं तो बहुत प्यार से व्यवहार कर रहे हैं, और जब अपने ही कुछ लोग हैं तो व्यवहार अलग है। ये तो दुतर्फा व्यवहार हुआ। दो रूप हुए, जिसके दो रूप हैं वो डूबने वाला है, जिसका एक ही रूप है वो पूरी रीति तैरने वाला है, डूबेगा नहीं कभी। अगर एक रूप में आप रावण हो तो भी बाप आपको राम बना देगा। अगर राम हो तो बहुत अच्छी बात है, कृष्ण बना देगा। समझ की बात है। लेकिन बाहर से कृष्ण का रूप दिखा रहे हो, राम का रूप दिखा रहे हो, और अंदर से अगर रावण हो तो ड्रामा, और कुछ नहीं, जो होगा वह ड्रामा। इसलिए अंदर बाहर साफ रहूं। विचित्र रहो वरना निराकारी अवस्था में रहो, लेकिन कर्मों में विचित्र नहीं बनो। अंदर से कुछ और कर्म और बाहर से कुछ और, ये कब होता है? इतने वर्षों से बाबा श्रृंगार करा रहे हैं, लेकिन श्रृंगार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, तो कैसे होगा? अपने को चेक करना। एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। समय आएगा, लगेगा जब समय था तब श्रृंगार नहीं किया, करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उस समय नहीं किया, समय चला गया, फिर पछताएंगे। और दूसरे जो उसी समय को याद करके बहुत खुश हो जाएंगे कि बाप दादा ने हमें समय पर श्रृंगार कराया और हमने कर लिया। ऐसे दो प्रकार के बच्चे निकलेंगे, एक जय जयकार वाले और दूसरे हाहाकार वाले, एक मौज करने वाले और दूसरे पछताने वाले। यह होना ही है। हर कोई अपने को चेक करे, आप कौन से बच्चे हो। तो अभी वह समय है, पहले तो वह अपने को निरहंकारी नम्रचीत कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। बाबा शुरू में कहते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, निरंतर देही अभिमानी अवस्था मेरी भी नहीं रहती। लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सन्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। अव्यक्त होने से पहले जिन जिन आत्माओं ने अनुभव किया उन सबको पता पड़ा होगा कि अभी अव्यक्त आकारी रूपधारी बाबा अनुभव हो रहे हैं। यह परख होती है। या परख शक्ति जिनके अंदर है उनको पता पड़ता है कौन सी आत्मा कितनी संपन्न और संपूर्ण बनी है। वह वृत्ति से, विचारों से, वाणी से और कर्मों से पता पड़ता है। यह समझ की बात है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा? इन छोटी छोटी बातों को न सुनने का कारण क्या था कि यह समय निरंतर याद में बीते। शुरू शुरू में बहुत सारी छोटी छोटी बातों को सुनना पड़ता था, उनके लिए समय देना पड़ता था, लेकिन अंत में बाबा ने जैसे सब छोड़ दिया, साक्षी होके बाबा के कार्य को बाबा देख रहे थे, शिव बाबा के कार्य को ब्रह्मा बाबा देख रहे थे कि करण करावन हार कैसे कर रहा है। यही ऊंची अवस्था है। बाबा यही कहते हैं, बस देखो तुम मेरी याद में बैठो, बाकी मैं संभालता हूं। तुम अपनी स्थिति में रहो, बाकी मैं संभालता हूं। तुम्हें देखने की करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि भी मैं ही चलाता हूं, तुम्हारे हाथ पैर भी मैं ही चलाता हूं, तुम्हारी वाणी भी मैं ही चलाता हूं। जहां मुझे जिस प्रकार ज्ञान देना है मैं दे देता हूं, तुम बस देखो, समर्पण हो जाओ और अनुभव करो। यही मौज है। यह मौज जिसने उठाई वह सबसे बड़ा फकीर बना, नंबर वन फकीर बना, चिंताओं से छूट गया। फकीर ही अमीर बनते हैं। बस करण करावन हार की ताकत को देखूं कि वह कैसे करता है। तो अंत समय में जैसे बाबा याद में बैठे, छोटी छोटी बातों का जो समय था वो समय उन बातों में ना देते हुए बाबा याद में बैठने लगे, तो अनुभव किया कि बाबा कैसे करता है और कराता है। आप बच्चों को भी बाबा यही कहते हैं कि तुम बस निश्चिंत रहो, समर्पण करो, बाकी मेरा कार्य। तुम्हें संपन्न और संपूर्ण बनाने वाला भी मैं ही हूं। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें संपन्न और संपूर्ण नहीं बना सकता, लाख पुरुषार्थ करो। अगर करण करावन हार बाबा है, सब कुछ करने वाला बाबा है, तो तुम चिंता क्यों करते हो? अमृत वेले तुम उठते नहीं, बाबा उठाता है। कोई भी हाथ उठा के दिखाए कि हम उठते हैं, हम अमृत वेला करते हैं, ये बता के दिखाए, बाबा उठाता है, बाबा अमृत वेला कराता है। आप करना चाहो ना तो कैसी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। कितनी बार नींद आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, बाबा कराता है। मुरली सुनाता भी बाबा है और आपके द्वारा आपको सुनवाता भी बाबा है, याद रखना। आप नहीं मुरली सुनते, धारणा भी बाबा कराता है और आपसे सेवा भी बाबा कराता है। हर रूप से आपका उद्धार बाबा कर रहा है, आपको पावन बाबा बना रहा है। कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना कि आप करते हो, या कभी भी किसी को यह गलत फहमी में नहीं डालना कि आपने कितनी अच्छी सेवा की, आपका योग कितना अच्छा है, आपका ज्ञान कितना ऊंचा है, आप कितनी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, उसको भी गलत फहमी में नहीं डालना। बाबा करता है। सारी आत्माएं ज्ञान लेती है और सुनाने वाला सिर्फ एक ही है, बाबा। बाबा यही कहता है, अगर किसी की ताकत है तो कह के दिखाए कि हम ज्ञान सुनाते हैं, हम योग कराते हैं, कह के दिखाए, फिर देखते हैं ड्रामा। बाबा करता है या आप करते हो? तो अंत समय में बाबा निरंतर याद में बैठे, छोटी छोटी बातों को छोड़ दिया। बच्चों का भी यही कर्तव्य है, समय अंत का चल रहा है, कितना छोटी छोटी बातों में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, समय गवाएंगे, कितना गवाएंगे। महाकाल खड़ा है, इस वर्ष से उसका पाठ शुरू हो गया है, कभी भी किसी को भी उठा सकता है, याद रखना। इसलिए समय नहीं गवाओ। समय जाने के बाद पछताना पड़ेगा कि बाबा इतनी शिक्षाएं दे रहा था, इतना ज्ञान दे रहा था, लेकिन हमने सुना नहीं। फिर सब होते हुए हाथ में कुछ नहीं रहेगा, इसलिए जितना हो सके बाबा की याद में समय को बिताओ, बाबा की याद में बैठो। क्या दुनियावी बातों में जाना, आखिर होगा वही जो होना है। अब चाहो ना चाहो, सुनो ना सुनो, देखो ना देखो, ड्रामा वही होगा जो होना है। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अंत समय में जिन्होंने नोट किया उनको बाबा के मस्तक में सितारा दिखता था, चमकता हुआ, एक रोशनी, एक लाइट दिखती थी और बहुत गहन अनुभूति होती थी हर किसी को, देखने वाले को, जिन्होंने उस दृष्टि से देखा, उस नजर से देखा, उस कॉन्शियसनेस से देखा, उस देही अभिमानी अवस्था से बाबा को देखा। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना, पहचाना। जो अव्यक्त स्थिति में थे उन्होंने जाना, पहचाना और समझ भी गए कि बाबा अभी संपन्न और संपूर्ण बन गए। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। जो खुद अव्यक्त अवस्था में नहीं थे, देही अभिमानी अवस्था में नहीं थे, वो कहाँ से पहचानेंगे? वो यही संकल्प चलाएंगे कि इतनी जल्दी बाबा अव्यक्त क्यों हुए, क्या कारण था, थोड़ा समय और रुकते, हम बच्चों को और थोड़ी पालना देते। लेकिन जो अव्यक्त स्थिति में थे वह यही सोचेंगे कि ड्रामा और बाबा की मर्जी, शिव बाबा की मर्जी। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, न कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। बाबा कहते हैं स्थापना का कार्य पूरी रीति ब्रह्मा का है। स्थापना तक पूरी रीति पालना ब्रह्मा बाबा ही देंगे, ब्रह्मा ही देंगे। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। स्थापना हुई नहीं पूरी रीति, 33 करोड़ बनने हैं, यह समझ की बात है। जब 33 करोड़ पूरी रीति बनेंगे तब ब्रह्मा का पार्ट पूरा हो जाएगा स्थापना का, और श्री कृष्ण जन्म हो जाएगा। 33 करोड़ बने ही नहीं तो श्री कृष्ण जन्म कहाँ से होगा? बाबा का एक पार्ट पूरा हुआ नहीं तो दूसरा पार्ट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से होगा? समय अभी बाकी है, अंत समय बहुत तेज गति से चलेगा। कम समय में बहुत बड़ी स्थापना होगी, बहुत बड़ी स्थापना होगी। बहुत कम समय में 33 करोड़ आत्माएं तैयार हो जाएंगी। तब तक ब्रह्मा का पार्ट चलेगा और बाबा को कार्य करना ही है। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि थोड़े बच्चे तैयार हुए तो बाकी के बच्चे बच्चे बना देंगे। ये बच्चों का काम नहीं है, ये बाप का ही काम है, बच्चों को राजधानी के लिए तैयार करना। बच्चे खुद तैयार हो रहे हैं। अगर बच्चे तैयार हुए हुए होते तो बात अलग होती, अभी भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो दूसरों को कैसे तैयार कर सकते हैं? तो अंत तक यह पार्ट चलेगा। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्यों के क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए। सभी बच्चे सोचते हैं कि अभी आगे क्या होगा। जैसे ड्रामा में नूंद है उस अनुसार कार्य होगा, पर कार्य होना नूंद है और निश्चित है, पक्का है। कार्य आधा अधूरा नहीं रहेगा, पूरा होगा। क्योंकि कार्य होगा तभी तो कल्प और युग परिवर्तन होगा। कार्य अगर आधा है तो सतयुग नहीं आ सकता। 33 करोड़ जब तैयार हो जाएंगे तभी आएगा, और तभी जैसे अंतिम विनाश शुरू हो जाएगा। हर घर गीता पाठशाला बनना है, हर गली में बाबा का सेंटर बनना है, हर देश में बाबा का झंडा फहरेगा। अभी तक ऐसे कितने गांव हैं, कितने शहर हैं, कितने देश हैं जहां बाबा का ज्ञान पहुंचा नहीं है। जब तक एक भी आत्मा बाकी है जिसको बाबा का परिचय नहीं हुआ है, तब तक विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वह आत्मा उलहना देगी। हमें तो पता ही नहीं था कि आप आए थे, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि आप आए थे, तो अभी बहुत सारी आत्माएं आना बाकी है। 33 करोड़ तो होनी ही होनी है कैसे भी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे क्यों के क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं क्वेश्चन नहीं उठाओ, कैसे होगा, कब होगा, होगा इतना निश्चित है, क्योंकि यह बाबा का वचन है आदि से अंत तक। लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे हलचल में आ जाते हैं, पता नहीं अब आगे क्या होगा। आपको पता नहीं, लेकिन बाबा को सब पता है आगे क्या होगा, कैसे होगा। आप बस बाबा को याद करो, अपनी स्थिति में आ जाओ, आपको अपने आप पता चलेगा आगे क्या होगा और कैसे होगा। आप अपनी स्थिति में ही नहीं होंगे और कोशिश करेंगे यह जानने की कि ड्रामा की अगली सीन क्या है, तो यह कैसे पॉसिबल है। स्थिति में आ जाओ, ड्रामा की अगली सीन पता पड़ेगी, पूरी नहीं लेकिन कुछ अंश में आपको पता पड़ेगा कि ड्रामा कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे क्या होगा, सब पता पड़ेगा। यह पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया, कुछ तो धीर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों। शुरू का यह पहला पेपर था, बहुत थोड़ों ने पास किया। हलचल में आना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही सिद्ध करना कि पता नहीं यह किसका कार्य है, कौन कर रहा है, कैसे होगा। आप समझते हो ना कि किसका कार्य है, कौन कर रहा है, कौन अथॉरिटी है, तो क्वेश्चन क्यों और फेल क्यों हो रहे हो फिर। अगर आपको यह पता है किसका कार्य है, कौन कर रहा है, तो फेल क्यों हो रहे हो। फेल हो रहे हो इसका मतलब यही है कि आप नहीं जानते कि किसका कार्य है, उसकी शक्ति को, उसकी अथॉरिटी को नहीं जानते, उसकी पहचान को नहीं जानते, उसकी पावर्स को नहीं जानते कि वो क्या कर सकता है। इसलिए बहुत थोड़ों ने पास किया, बाकी सब फेल हो गए। जो हलचल में आए वो गए। कुछ तो धीर्य रखो, जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों। ज्ञान को अविनाशी कहते हैं, पढ़ाई को अविनाशी कहते हैं, और खुद हलचल में आ जाते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, तो यह प्रश्नों की हलचल क्यों, कारण एक ही है, पढ़ाई पढ़ी नहीं, ज्ञान को उठाया नहीं। जिन्होंने ज्ञान को उठाया है, पढ़ाई पढ़ी है, वो हिलेंगे नहीं, वो अचल अडोल रहेंगे, स्थिर रहेंगे। उन्हें पता है बाबा बैठा है, वो सब ड्रामा प्लान अनुसार करता जाएगा और सतयुग को लाएगा। ये जानते हो बच्चे, फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी भी समझो कि बाबा क्या है, कैसा है, उसका कार्य क्या है, कार्य कैसा है और उसका करने का तरीका कैसा है। बाबा को क्यों कहना पड़ता है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रूप से मुझे कोई नहीं जानते? क्योंकि बच्चों ने अपनी बिलीफ सिस्टम बना ली है कि बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है। अब जितना सोचते हो उससे कई परे बाबा है। बाबा जब तक बाबा की ताकत ना दे तब तक बाबा कैसा है इसके लिए आपकी बुद्धि चल ही नहीं सकती। सत्य स्वरूप में बाबा कैसा है इसके लिए तो बाबा हर वक्त बच्चों को समझाते रहते हैं कि समझो, अभी तो समझो, नहीं तो समय समझा देगा। और समय का समझाना बड़ा विचित्र है। विचित्र को समझने की कोशिश करो, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी ड्रामा में। विचित्र को समझने के लिए सदा अपने को आत्मा समझ, उसकी याद में बैठो, तभी समझ पाओगे। अपना अहंकार छोड़ो, नम्रचीत बनो और अपने को सदा बाप की याद में रखो, तभी समझ पाओगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सदा मन बुद्धि को समर्पित करना, बाबा को समर्पण करके मन बुद्धि को चलाना। अपनी प्रॉपर्टी समझ के मन बुद्धि को नहीं चलाना, बाबा की प्रॉपर्टी समझ के बाबा को चलाने देना और मन बुद्धि को सदा बाप में लगाए रखना। समय अपनी घंटी बजा रहा है, इसे समझना। अच्छा, ओ शांति।